ये प्रोसेस ना कि सिर्फ एक्सपेंसिव है पर इतना लेंदी और कभी कभी लगता है कि अनफेवरेबल है हम लोगों के लिए. कि मेरे साथ मेरे कलीग से जब मैं मास्टर्स पढ़ रही थी वो MBBS डॉक्टर थे, वो फ्रस्ट्रेट होके अब वो टैक्सी चला रहे हैं.
दोस्तों, SBS की करियर कोचिंग सीरीज में और ऑस्ट्रेलियन जॉब मार्केट सीरीज में मैं अक्सर एक मुद्दे को उठाता रहता हूं और वह है भारतीय उपमहाद्वीप से आने वाले स्किल्ड माइग्रेंट्स की फ्रस्ट्रेशंस, खासतौर पे जब उनके पास डिग्री, एक्सपीरियंस और लगन होती है. आज हमारे साथ स्टूडियो में है अनाहिता, जो कि पेशे से एक स्किल्ड फिजियो है पर ऑस्ट्रेलिया में अब तक अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए कामयाब नहीं हो पाई हैं. इसके क्या कारण है जानते हैं स्वयं अनाहिता से. अनाहिता जी, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
थैंक यू.
भारतीय उपमहाद्वीप से आने वाले लोगों के पास अच्छे यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन से डिग्रीज होती हैं, एक्सपीरियंस होता है और लगन भी होती है काम करने की, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं फेडरल सरकार द्वारा स्थापित ऑस्ट्रेलिया में जिनकी वजह से कामयाबी हमारे कदम नहीं चूम पाती. आपकी क्या कहानी है आज हम ये जानना चाहते हैं. बताएंगी गुजरात से ऑस्ट्रेलिया तक के सफर के बारे में.
मेरी कहानी ये है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी गुजरात इंडिया से और मेरे पास 4 साल का लोकल एक्सपीरियंस था. एंड देन मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए, क्योंकि फिजियोथेरेपी की फील्ड ऐसी है जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत बूमिंग है, तो बेटर फ्यूचर के लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया मूव हुए. हम लोग आए थे एज स्टूडेंट वीजा, क्योंकि हमको लगा कि इट वुड बी गुड कि लोकल एजुकेशन कुछ मिले. मैं चाहती थी कि मैं मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी करूं, पर क्योंकि उसकी फीस बहुत ज्यादा थी, इट वॉज अबाउट 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स फॉर 2 ईयर्स, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं कोई दूसरी पैरेलल डिग्री मैं करती हूँ. तो मैंने मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ की, 1 साल मास्टर्स ऑफ हेल्थ साइंस की दूसरे साल. पर फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने प्रोफेशन में वापस रिटर्न होना चाहिए. तो मैंने पहले सारा डेटा इकट्ठा करना शुरू किया कि ये असेसमेंट किस तरीके से होती है ऑस्ट्रेलिया फिजियोथेरेपी काउंसिल की. तो मैंने अपने फ्रेंड से भी सलाह ली. शुरुआत में बहुत इंटिमिडेटिंग लगा कि कैसे प्रोसेस होगा, क्योंकि 3 स्टेप में था. पर फिर भी मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया और मैंने फाइनली अपना प्रोसेस शुरू किया था नवंबर 2014 में.
जी अनाहिता जी, थोड़ा बताएंगे कि ये प्रोसेस होता क्या है. जैसे आपने कहा 3 चरणों पे ये प्रोसेस है, कितना लंबा होता है, कितना खर्चा आता है इस पूरे प्रोसेस में.
तो step 1 है आपका एलिजिबिलिटी असेसमेंट, जिसमें आप अपने यूनिवर्सिटी की डिग्री भेजते हैं. आपका 4 साल में जो भी आपने सब्जेक्ट कवर किए होते हैं उसके लेटर आप भेजते हैं फिजियोथेरेपी काउंसिल को और वो बताते हैं कि आप असेसमेंट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं. एंड बस इतने एक सर्टिफिकेट के लिए आपको पे करना होता है 1100 डॉलर. जी. और जो ये सर्टिफिकेट के बाद आपको तकरीबन 6 महीने वेट करना पड़ता है टू गेट अ डेट आपकी रिटर्न असेसमेंट के लिए, जिसके लिए आपको अगेन $1500 पे करने होते हैं. एवरीथिंग इज अप फ्रंट. रिटर्न एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको तकरीबन 12 से 13 महीने तक वेट करना पड़ता है आपकी 3 क्लिनिकल एग्जाम की डेट्स के लिए. तो एक तो क्लिनिकल होती है आपकी न्यूरोलॉजिकल, दूसरी होती है मस्कुलोस्केलेटल और तीसरी होती है कार्डियोवैस्कुलर. तो इनों 3 का मिला के आपको 4500 अपफ्रंट पे करना पड़ता है 1 साल पहले से ही, इवन बिफोर यू गेट योर डेट्स. अगर तो कोई एग्जाम अगर आप क्लियर नहीं करते और आपको लगता है कि आपने रिव्यू करवाना है, एक टेस्ट के रिव्यू का आपको $550 पे करना होता है. और अगर तो रिव्यू में भी कुछ ना निकले और आपको अगर दोबारा एग्जाम देनी होती है तो उसके लिए आपको पे करना होता है $1350. वो एग्जाम के रीसेट के लिए अगेन यू हैव टू वेट फॉर अनदर ईयर.
तो पूरा प्रोसेस फिर दोबारा शुरू हो जाता है.
जी, आपको दूसरा अटेम्प्ट मिलता है वो एग्जाम क्लियर करने का. अगर आपने वो एग्जाम दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर नहीं की तो आपको फिर से एलिजिबिलिटी असेसमेंट, रिटर्न असेसमेंट और वापस क्लिनिकल देना पड़ता है.
आपने भारत में कितने वर्ष का अपना अनुभव बताया?
मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस था इंडिया में एज ए फिजियो.
तो आप अपना खुद का स्वयं का काम कर रही थी या किसी हॉस्पिटल वगैरह में लगी हुई थी वहाँ?
मैं खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही थी तब.
तो जब आपके पास लोग भारत में आते थे तो किस तरीके का उनका रिएक्शन होता था जब फिजियोथेरेपी करवाते हैं वहाँ पर?
इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंट आउटलुक है फिजियोथेरेपी का, पर से भी मेरे पास डॉक्टर्स थे क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी टॉपर थी, तो मेरे जो भी जो ऑर्थोपेडिक जो सर्जन जो प्रोफेसर थे वो अपने पेशेंट्स मुझे रिफर करते थे, मेरे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वो मुझे पेशेंट्स रिफर करते थे, तो वो काफी अच्छी चल रही थी प्रैक्टिस. पर इवन मैं जब ऑस्ट्रेलिया आई, मैं यहाँ पे अभी पब्लिक हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ एज ए फिजियोथेरेपिस्ट पिछले 15 महीनों से, एंड मेरे जो सुपरवाइजर है वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और मैं इंडिपेंडेंटली रीजनल हॉस्पिटल्स में भी जाती हूँ, इन पेशेंट्स देखती हूँ, आउट पेशेंट्स देखती हूँ. तो एक्सपीरियंस वाइज अगर आप देखो तो मेरे पास काफी वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस है, इवन नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट इवन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया.
जी, और अनुभव की बात की तो जब आप एग्जामिनेशन पे आते हैं रिटर्न या क्लिनिकल में, तो और लोग भी आपके आसपास बैठे होते हैं जो वो एग्जाम देने आए हैं, उनके अनुभव क्या रहे हैं इस एग्जामिनेशन और चयन प्रक्रिया के बारे में?
देखिए, जहाँ तक बात आती है रिटर्न एग्जामिनेशन की, तो बहुत अच्छा पासिंग रेट होता है क्योंकि हम लोग जब इतने पैसे दे के जब अप्लाई करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपना 100% दें, तो रिटर्न एग्जामिनेशन तक का पासिंग रेट एकदम फैंटास्टिक है. पर मुझे पता नहीं क्यों क्लिनिकल एग्जाम तक आते आते सब अपसाइड डाउन क्यों हो जाता है, पासिंग रेट बहुत ही ज्यादा कम है. और जितने मैं अपने इंडियन दोस्तों को जानती हूँ जो इस प्रोसेस में है, अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, एंड बार बार आती है कि जो असेसमेंट का लेवल है, जो ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल है वो कहता है कि एंट्री लेवल फिजियोथेरेपी की स्किल्स होनी चाहिए. वो हमसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मांगते, वो जानते हैं कि ओवरसीज क्वालिफाइड है, कोई बात नहीं, जैसे एक फ्रेशर कॉलेज से निकलता है एटलीस्ट उतनी आप में नॉलेज हो तो हम आपको रजिस्ट्रेशन दे दें. पर जो असेसर्स हमको मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हम लोगों से, जो बिल्कुल भी गलत है.
तो आपको लगता है इस पूरी चयन प्रक्रिया में किस तरीके से सुधार लाया जाएगा, खासतौर पे जो विदेशों से अनुभव और डिग्री लेकर डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर, वो किस तरीके से, आप अगर अभी आपसे बोला जाए कि सरकार अगर आपकी बात सुन रही है, जो लोग सुन रहे हैं, सरकार तक आपकी बात पहुँचाए, तो आप क्या अपील करेंगी?
मैं ये चाहूंगी कि एक तरीके का ब्रिजिंग कोर्स हो, कि अगर मैंने $7,000 देने हैं पूरे सिस्टम में, मैं शायद थोड़े और पैसे डाल के एक ब्रिजिंग कोर्स करूं ताकि मुझे आइडिया आए कि ये लोग आखिर क्लिनिकल एग्जाम में चाहते क्या हैं. चलिए, मैं यहाँ पे, मुझे लोकल एक्सपीरियंस है, मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, पर कई मेरे फिजियो दोस्त हैं जो इंडिया से ट्रेन होके आए हैं, उनको तो वो इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. मैं तो अपने आप को फिर भी लकी महसूस करती हूँ कि मैं एज ए फिजियो प्रैक्टिस कर रही हूँ, भले ही वो लिमिटेड रजिस्ट्रेशन हो और मेरे सुपरवाइजर होते हैं मुझे हेल्प और गाइड करने के लिए, पर कई लोग को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. तो बस एक ब्रिजिंग कोर्स हो ताकि वो बोले चलो 1, 2, 3 ये प्रोसेस है, एंड बस इससे 19-20 नहीं होना चाहिए. दूसरी बात ये है कि जो वो असेसर्स देते हैं, जो वो एपीसी की जो फिजियोथेरेपी की जो काउंसिल है उसकी गाइडलाइंस मुझे लगता है फॉलो नहीं करते. अभी आप सवेरे ही मेरे एक दोस्त से चर्चा हो रही थी, एंड नॉट ओनली हिम पर उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी सेम प्रॉब्लम आई है कि जो असेसर्स होते हैं वो थोड़ा सा इम्पार्शियल कभी कभी बिहेव करते हैं, उनको 100% परफेक्शन चाहिए. पर दे शुड रियलाइज कि जो काउंसिल कहता है वो एक एंट्री लेवल फिजियो स्किल्स चाहिए, उनको ऐसे नहीं चाहिए कि जिसके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो. हम किस तरीके से कॉम्पीट करेंगे उन एसएसएस से जिनके पास 15-20 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है, और हम उनके सामने कुछ नहीं है.
अनाइता जी, हम तो यही उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं कि आपको जल्द से जल्द आपका रजिस्ट्रेशन मिले और आप फिजियो की तरह पूर्ण रूप से अपना बिजनेस फिर से शुरू कर सकें. SBS में बात करने के लिए धन्यवाद.
थैंक यू वेरी मच.